कितना हद तक व्यवहारिक रूप से भी नुकसान करता है, डैमेज करता है हमारे लाइफ को, और आध्यात्मिक रूप से हमारे भक्ति को भी कितना डैमेज करता है
क्या
प्रजल्पन, तो वो मुझे जानना है, और उसको कैसे अवॉइड करना चाहिए, व्हाट वी शुड टेक स्टेप्स सो दैट वी कैन ग्रेजुअली और सम और अदर वी कैन अवॉइड इट कम्प्लीटली। अगर 20% है तो जीरो पे कैसे हाउ वी विल रीच, बिकॉज इट इज़ ए प्रैक्टिकल वी हैव सीन कि कितना भी कोशिश करते हैं देन स्टिल गेट दैट अगेन इन द मोड ऑफ प्रजल, बाद में पता चलता है हमने टाइम पास किया, सो हाउ वी कैन ग्रेजुअली।
सबसे पहले आपको अगर लगता है कि 20% प्रजल्प हो रहा है तो ये सबसे बड़ी गलत बात है, वो आपका ये भ्रम है कि आप केवल 20% करते हो। सबसे पहले प्रजल्प की व्याख्या करना जरूरी है ना, प्रजल्प क्या है? भगवान की सेवा के बिना की गई चर्चा, उसको प्रजल्प कहते हैं। उसको संस्कृत में शास्त्रीय भाषा में ग्राम्य कथा कहते हैं। ग्राम्य कथा और नगर कथा में क्या फर्क है? क्योंकि ग्राम में लोग बहुत फ्री रहते हैं, ग्राम का एक स्वभाव है, ग्राम का जीवन ही ऐसा है कि वो संत रहता है, शांत रहता है, और शहर जैसे नगर जैसे ग्राम में लोग इतना बिजी नहीं रहते हैं। अब कोई भी गांव में जाओ, मुंबई के पास वाले गांव में जाओ, इधर से वो कौन से प्रभु जी वो गाय वाले इधर इधर जन्माष्टमी प्रभु की इतना 10 किलोमीटर दूर है वो, उधर भी चले जाओ आपको तुरंत चलेगा कि जीवन बहुत संत है यहाँ पर, कोई प्रेशर नहीं है, भाग दौड़ी नहीं है, जो भी है। आप भी गाँव जाएंगे तो कौन बोले है काम है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई मिनट टू मिनट भाग रहे सब लोग, तो समय ज़्यादा रहता है ना, फ्री समय ज़्यादा रहता है। किसान भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो ऐसा 15 घंटा दिन में 6 महीना 12 महीना मेहनत नहीं करता है, उसका एक समय रहता है, तभी बहुत मेहनत करता है, उसमें भी वो फ्री रहता है, दोपहर को आके थोड़ा सोता है अगर आराम से, फिर वापस जाता है खेत में, वो कुछ महीने के लिए होता है, उसके बाद में वो आराम भी करता है। ये बेसिक जीवन पद्धति है ग्राम की, इसलिए ग्राम में कथा ना सुनी बे, ग्राम में कथा ना कोही बे, क्योंकि जब समय होता है ना आदमी का फालतू समय होता है ना, तो फिर वो दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो रवि शिंदे के घर में वो बम्बई से कौन सा मेहमान आया था, वो डॉक्टर था, वो उसके काम कंपनी में डायरेक्टर था, वो 3 दिन के लिए आया है, उसका जन्माष्टमी पर प्रवचन है, ये सारी बातें सबको पता रहती है। ऐसा है महाबलेश्वर में जब मैं बस पकड़ता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ ना कि मुझे बुरडाणी जाना है, तो वो कंडक्टर पूछता है किसके घर पे, तो मैं बोलता हूँ शैलर मामा के घर पे, अच्छा अच्छा अच्छा, उनको पता रहता है। अब आज मेरे बिल्डिंग में आप मुझे पूछो 54 नंबर में कौन रहता है, मुझे मालूम नहीं है, 71 नंबर में कौन है मुझे मालूम नहीं है, एक्चुअली मेरे 28 फ्लैट में मुझे केवल कुछ ही लोगों की पहचान है, बाकी जब बिल्डिंग में लोग लिफ्ट में आवागमन होता है ना, मिलता है ना लिफ्ट में, तो मुझे पता रहता है ना कि बिल्डिंग वाला आदमी है कि मेहमान है, ये फ़र्क है शहर में और बाहर में। तो ग्राम में कथा इसलिए कहा गया कि ग्राम में मतलब क्या, आपने आज ये साड़ी पहनी है वो कहाँ से खरीदी, कितने में खरीदी, कब खरीदी, कितना झगड़ा किया दुकानदार के साथ में लाने के लिए, ये भी लोगों को पता रहता है। लिटरली आज तुम्हारे घर में क्या सब्जी बनी है वो पता रहता है, क्योंकि शाम को जाके बैठेंगे बात करने के लिए, पूछेंगे फिर क्या सब्जी बनाई, फिर वो बोलेगी हाँ सब्जी आज वो नहीं मिली इसलिए बनाई, ये मुझे 4 आने में मिली, ये मुझे महंगी मिली, इतनी सारी डिटेल बातें होती है। तो साथ में क्या बनाया, नहीं आज मूंग की दाल खा के बोर हो गए तुअर की बनाई, ये भी पता रहता है सब लोगों को, इतना सब। लेकिन जब ये बातें होती है तो उसका नतीजा जो है ना पूरे यूजलेस रहता है, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं रहता। अभी आपने गाड़ी कितने में लाई है मुझे लाके क्या पता, लेकिन फिर भी मेरे पास समय है, मेरे पास कोई अच्छा ऐसा कार्य नहीं है जो मैं अभी करना चाहता हूँ या करूँगा या कर सकता हूँ, तो है ही नहीं, तो फिर मैं प्रवृत्त हो जाता हूँ इस सब डिस्कशन में। तो ग्राम्य कथा की व्याख्या है कि जो जो भगवान की सेवा में नहीं है ऐसी बातों की चर्चा को ग्राम्य कथा कहते हैं। गजल चले और वो प्रजल 100% नहीं करने वाला व्यक्ति केवल वही हो सकता है तो भगवान का शुद्ध है, नहीं तो कम अधिक मात्रा में सब लोग प्रजल पकड़ते हैं। तो मुझे 20% उनकी हंसी आई कि 20% करते हो अच्छी बात है, वो बहुत भाग्यवान। अधिकतर लोग 50-60-70% 80% प्रजल की करते रहते हैं, बाकी सब ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको जैसे ही मिलता है वो भगवान के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे कृष्णानंद प्रभु की याद करेंगे आप तो मान पड़ेगा कि वो आते ही पहले कृष्ण कृष्ण करते शुरू कर देते ट्रेन में भी फिगर भी बैठे, बहुत विनेशन लोग होते हैं, बाकी सब लोग तो नॉट नेसेसरीली कि भगवान के बारे में बात करें। अच्छा, अधिकतर जो प्रजल्प होता है ना वो तुलना और द्वेष इस पर आधारित होता है। जैसे आपने मेरी साड़ी लाई तो मुझे लगेगा अरे अच्छा है तुम्हारा, मैं तो नहीं लाया, नो काश मैं भी ला सकता, आप लाया दिवाली का समय मुझे भी इच्छा थी लाने के लिए कि नहीं लाया। क्या आपने कुछ खरीदा नया घड़ी या मोबाइल, आजकल कह रही हूँ मोबाइल, तो जैसे ही आपका नया मोबाइल आया मुझे तो लगा अरे जैसे मैंने डॉक्टर संकेत का मोबाइल देखा तो मैंने बोला कि क्या प्रभु जी आपको यूज़ तो करने को आता नहीं और इतना 20,000 का मोबाइल लिया है तो मेरा मोबाइल ले लो और आपका मुझे दे दो, ताकि मैं तो उसमें कई यूज़ करता हूँ, ईमेल क्या क्या करते रहता हूँ, आप तो कुछ भी नहीं करते, आपको तो ईमेल भी देखने को आता नहीं, तो वो मुझे दे दो, समझे ना। तो ऐसा है, और रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रजल्प करने वाला आदमी मौत को बुलाता है, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि जो मेंढक मंडराता है, तो मंडराता है ना मेंढक, आपको पता है मेंढक क्यों मंडराता है, हाँ बारिश आती है सब सबके लिए आती है, आप तो मंडराते नहीं हो ना, मेंढक ही मंडराता है, क्यों वो अपनी पत्नी को बुलाते रहता है, वो है ना वो ग्लो वर्म क्या बोलते हैं, जुगनू जुगनू काजुआ काजुआ, उसके पास लाइट क्यों आती है, वो एक प्रकृति का एक सुंदर क्रिएशन है, रात को आपको दिखेंगे सब पेड़ के पास इधर उधर सब दीपक दिखेंगे ऐसे दीपक घूमते हुए जुगनू, तो वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो नर जो है नर उसके पास ही होता है, वो मादी को नहीं होता है, तो नर अपना लाइट जला के मादी को आकर्षित करने का प्रयास करता रहता है। तो एक सृष्टि में जो जीवों के अंदर काम भावना है उसका एक प्रतीक है वो, तो महाराज ने किताब में लिखा है कि मैं बहुत प्रेम से जुगनुओं को देखा करता था, मुझे बड़ा आनंद आता था। एक दिन मेरे मित्र ने बताया कि ये क्यों होता है, तब से मेरा जुगनुओं को देखने का नज़र ही बदल गया वो देखने से ही बोला क्यों मैंने ये बात सुनी, आज तक मैं तो उसको देख के मुझे इतना अच्छा लगता था, आज मुझे देख के लगता है ये सब लोग तो काम भावना में फंसे हुए हैं। जैसे मोर सुंदर नृत्य करता है, क्यों नृत्य करता है, आप लोग बारिश आई बादल देखा बरसात आई, नहीं वो केवल मोरनी जब आसपास होती है ना तभी वो करता, तो वो भी उसके काम भावना का प्रतीक है। लेकिन ऐसा है तो इस तरह से जब मेंढक मंडराता है तो वो रहता है मंडराते हुए अपनी पत्नी के लिए या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, लेकिन सांप आता है उधर उसके भी वजह से उसको खा जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रजल्प करता है वो अपने मृत्यु को अपने समय से जल्दी बुला लेता है, और अधिक और अधिक और अधिक, और ये मनुष्य जीवन प्रजल्प में क्या व्यर्थ होता है बताओ, प्रजल्प में कौन सी वस्तु व्यर्थ हो जाती है, और वो समय जो है वो मनुष्य जीवन का समय है, कुत्ते का जीवन का समय नहीं है, मोर के जीवन का समय नहीं, चींटी के जीवन का समय नहीं, मेंढक के जीवन का समय नहीं, वो जो समय है उसको मनुष्य के जीवन का समय कहते हैं। ह्यूमन टाइम और मनुष्य के जीवन का एक एक पल भी इतना शक्तिशाली है, ये वो एक एक पल भी इतना शक्तिशाली हो सकता है जिससे उस पल में आपको भगवान की प्राप्ति हो। लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होए, ऐसा बोलते हैं ना। लव मतलब एक सेकंड का 11वां हिस्सा, उतना भी सत्संग अगर कोई दिल से करता है तो उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सर्वसिद्धि मतलब परम सिद्धि उसको हो सकती है, इतनी शक्ति है उस आपके हर एक आपके समय के, मेरे समय के, इनके समय के, उनके समय के, सबके समय के एक एक पल में उतनी शक्ति है। तो वो जो शक्तिशाली पल है या मिनट है या सेकंड है या घंटे हैं, वो हम जब प्रजल्प करते हैं तो वो नष्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो आपके जीवन में भगवान को प्राप्ति करने की जितनी शक्ति है, या मराठी में कहते हैं शक्यता यानी पॉसिबिलिटी जितनी है, वो आप ही खुद नष्ट कर रहे हो। ये मत समझना कि राधानाथ महाराज का समय हमसे ज़्यादा पावरफुल है, हमारा तो क्या है, चल जाएगा, उनका तो मिनट मिनट कीमती है। उन्होंने अपने मेहनत से, अपने साधना से, अपने कष्ट से, अपने तपश्चर्या से अपने समय का मूल्य बढ़ाया है, इसलिए उनके एक सेकंड की झलक देखने के लिए भी लोग तरसते हैं, और वो झलक मिलेगी तो उनके जीवन में परिवर्तन होता है। और हम दसों लोगों को गले मिलते रहते हैं, ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन की कीमत कम है, उनके जीवन की समय की कीमत ज़्यादा है। उन्होंने वो अपने बलबूते पर, अपने साधना पर उस समय की कीमत बढ़ाई। तो वैसे ही अगर आप समझते हो उस हद तक, जिस हद तक वो समझते हैं कि मनुष्य का जीवन कितना कीमती है, अगर आप वो समझते हो तो आपका भी जीवन का समय उतना मूल्यवान हो सकता है। लेकिन हम लोग अधिक से अधिक समय तक टाइम पास करके हमारे ही समय का मूल्य घटाते रहते हैं। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वो राधानाथ स्वामी महाराज के लिए भी, प्रभुपाद के लिए भी उतनी ही गति से चल रहा था जितनी गति से आपके लिए चल रहा है। आपके लिए फास्ट, उनके लिए स्लो, उनके लिए स्लो आपके लिए फास्ट, ऐसा नहीं चल रहा है। वो अपनी गति से चलता है, 24 घंटे सबको अपनी गति से प्राप्त होते हैं। लेकिन हम लोग उसका समय अपव्यय करते हैं, अपव्यय। समय का व्यय सब जगह होते रहता है, क्योंकि समय का स्वभाव ही व्यय है, क्योंकि वो आगे बढ़ते रहता है और पीछे की व्यय करते वो आगे बढ़ते रहते हैं। और समय जो है ना, वो हर अच्छी चीज़ को आपसे लेके जाता है, जैसे आपका यौवन, आपकी शक्ति, आपका उत्साह। समय का हर पल वो आपसे लेके जा रहा है। कल जितने आप उत्साहित थे उतने आज रहेंगे, इस गारंटी में आपका एक दिन का आयु बढ़ गई, कल अगले साल में आपकी आयु और बढ़ेगी तो आपका और शक्ति कम जाएगी। और आपका साड़ी अगर एक साल पहले ब्रांड न्यू था तो वो एक साल के बाद में एक साल पुराना हो जाएगा, और आपका भी चार्म खत्म हो जाएगा उसके बाद ही। तो समय जो है ना, वैसा ये नावीन्य यानी कि नव नवाया मानता जो होती है ना, वो भी छीन के लेके जाता है, हर चीज़ को वो छीन के लेके जाता है। तो वो छीन के लेके जाने वाले समय को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वही समय आपको देता है, आपसे लेता नहीं है कुछ। वो आपको लाभ, उन्नति और आध्यात्मिक भावना देते रहता है। और प्रजल्प करना है ना, प्रभु जी प्रजल्प अपनी अंदर की एक नेगेटिव प्रवृत्ति है वो, समझो। अभी इसको चालू कर देना कि भाई वो माता जी वैसी है वैसी है, तो हम लोग ना अपने आप को रोक नहीं पाते उससे। वो आप भी कुछ बोलेंगे, हाँ मेरा भी ऐसा ही हुआ था एक समय ना, मेरा भी ऐसा ही था, मुझे भी ऐसा ही अनुभव आया था। फिर दूसरे आदमी भी कुछ बोलेगा, और दुर्भाग्य से अगर उनके बारे में कुछ अच्छा बोला ना तो फिर चार फीडबैक नहीं आएंगी, हाँ मुझे भी अच्छा अनुभव आया था, ऐसा नहीं आएंगी। लेकिन बुराई में तुरंत आपको फीडबैक मिलेंगे चार पाँच लोगों को। शांत आदमी भी इसके पास कुछ सब्सटेंस नहीं है, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ डालेगा उसके अंदर, है ना। ये भौतिक दुनिया का गुण है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, भौतिक दुनिया में होता है। क्योंकि हम लोग भौतिक दुनिया में हैं, इससे नेगेटिव नकारात्मक बातों में हमको अधिक इंटरेस्ट रहता है और हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है उसके अंदर नेगेटिव में। अभी बोलेंगे ना कि इनका गौरव करो तो बहुत शब्द तटपुंजे हो जाएंगे, एकदम से निकलेंगे नहीं शब्द। और बुराई करने का रखोगे अकेले बैठ कर तो फिर रात भर भी कर सकते हो। इसीलिए हम सब लोग आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है वो कभी भी ना जहाँ निगेटिव डिस्कशन शुरू हो गया ना, या तो वो कुशलता से उसको विषय को बदल लेता है, अपनी कुशलता से तुरंत दूसरा विषय निकाल लेते हैं और लोगों को उधर लेके जाता है विषय में। कुछ लोगों की कुशलता होती है, कभी निगेटिव निगेटिव चल रहा है तो तुरंत वो अच्छा ठीक है फिर वो उसका क्या हुआ, उन्होंने कितना हलवा अच्छा बना था जन्माष्टमी में, ऐसे तुरंत लेके जाएगा आपको, आपको सबको मन को उधर कहीं और दिशा बदली पड़ेगा उसका। लेकिन सब लोग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते तो व्यक्ति वो उठ के चला जाएगा कुछ और काम से, बोले सर मेरे को जाना है, बच्चे को पिकअप करना है, स्कूल से भी खड़ा होगा उसको तुरंत निकल जाएगा। वो बहुत बड़ी बुद्धिमानी है जो कॉलेज में बहुत कम पाई जाती है। आमतौर पर उनको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा है, डिस्कशन रॉन्ग दिशा में जा रहा है, लेकिन हम लोग उठ नहीं पाते, वहाँ हमारे में उतना विश्वास नहीं है, मुझे उतना चाहिए, उतना कन्विक्शन नहीं है, श्रद्धा नहीं है कि ये बात गलत है, मुझे इसमें सहभाग नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं होता। बचे रहेंगे, टिके रहेंगे और कुछ ना कुछ सुनते रहेंगे। और प्रगल्प का एक बुरा एक गुण होता है, प्रगल्प सुनने पर भी अपराध होता है, आप करते नहीं होंगे शायद, लेकिन अगर बैठे होंगे आप और आपके कान पे गिरता है वो, तो वो भी आपका नुकसान है। ये सबसे ख़राब चीज़ है प्रगल्प, प्रगल्प जैसे आपको गटर में कूदने की ज़रूरत नहीं है, गटर के पास जाएंगे ना पास, तो भी आपको उसका बदबू आएगा, और आपको खुद पत्थर फेंकने की ज़रूरत नहीं उसके अंदर, कोई पत्थर फेंकेगा ना तो भी आपको छिटा उड़ेगा। गटर चीज़ ही ऐसी है, उसका नाम, उसका गंध, उसका सान्निध्य, उसका दर्शन, हर प्रकार से उसका स्पर्श, हर प्रकार से वो नेगेटिव होता है, और उसका विचार करने से भी बदबू आने लगती है मन में कभी। वैसे बदलप ऐसी चीज़ है, वो अगर आप समय पर पहचान नहीं पाए ना कि बदलप हो रहा है, तो आप उसमें ऐसे फंस जाओगे ना जैसे मकड़े के जाल में वो कीटक फंसता है, तो निकल ही नहीं पाता। इसलिए ये मत समझना कि मैं तो कुछ बोला नहीं, मैं तो खाली बैठा रहा होगा, इसलिए मैं क्लीन हूँ, मैं मुझे कोई परिणाम नहीं होगा उसका। लेकिन नहीं, अगर आप वहाँ बैठे भी रहेंगे तो आप पर उसका परिणाम होगा। क्या परिणाम होगा? चेतना दूषित हो जाएगी आपकी, अच्छी खासी चेतना आपने सुबह जप करके आज प्राप्त की थी, जैसे प्रगल्प सुनेंगे आप कितना भी अच्छा जप किया होगा वो दूषित हो जाएगा। कितना भी सर्फ से धुला हुआ सफ़ेद कपड़ा पहन के आएंगे, गटर का छींटा पड़ेगा तो आप नहीं बोल सकते कि वो सर्फ से धुला हुआ है, वो भी सच है लेकिन ये भी सच है, चीज़ ही ऐसी है। इसलिए सबसे पहले प्रगल्प को पहचानना समय पर ज़रूरी है, अगर आप में उतना शक्ति है तो आपको बोलना चाहिए कि तो मुझे बंद करिए बात, इसको मुझे नहीं सुनना है इसके बारे में, क्यों हम लोग बोल रहे हैं इसके बारे में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक प्रकार का प्रगल्प जो है ना, एक प्रकार का प्रगल्प होता है जो अपराधी होता है, मतलब ये सीजीपी ऐसी है, वो ऐसा है, ऐसा 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 होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है, व्यक्ति पर होता है आधारित या संस्था पर आधारित होता है या किसी चीज़ पर आधारित होता है। और एक प्रगल्प ऐसा होता है जो किसी का अपराध नहीं होता है लेकिन बिल्कुल बेफजूल की बात है। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल होगा, अरे क्या सब्जी बनाई आपने आज, तो बोले कॉलीफ्लावर की सब्जी बनाई, ये उसका एक ही वाक्य का उत्तर है, लेकिन वो व्यक्ति कैसे बताएगा, अरे वो कॉलीफ्लावर ना मैंने दादर से लाया था, अरे चार जगह गई थी मैं लेकिन वो अच्छा नहीं मिला, फिर पाँचों जगह पर गई तो सस्ता भी मिला, उधर मैंने बार्गेन किया तो नहीं मिला, फिर वो एक भी जगह अच्छा मिला लेकिन उसमें सस्ता मिला क्योंकि कीड़ा था उसके अंदर, फिर मैं वो छोड़ दिया, फिर पाँचों जगह गई और फिर घर पे आई, फिर घर पे आके मैंने सोचा कि मैं भाजी बनाऊँ कि सब्जी बनाऊँ कि क्या बनाऊँ, मसाले वाले बनाऊँ क्या बनाऊँ, बाद में मुझे बहुत बोर हो गया, फिर मैंने ना सिंपल सब्ज़ी बनाई और उसमें ना नमक ज़्यादा पड़ गया, क्या करूँ, फिर नमक पड़ गया तो फिर मैंने उसको बटर डाल दिया उसको भरी में, अब इसमें अपराध कैसा नहीं है। लेकिन ऐसे कोई औरतें और आदमी होते हैं ना, वो ऐसे बोलने लगते हैं, बाद में बोलेंगे मेरे अरे हमारे गांव में इतनी अच्छी कॉलीफ्लावर मिलता है ना, ये यहाँ का मुंबई में बेकार ही मिलता है, मेरे गांव में मेरे दादाजी का खेत था ना, उसमें इतने अच्छे कॉलीफ्लावर मिलते थे, क्या बताऊँ, इतना स्वाद हुआ करता उसके अंदर। लेकिन दादाजी हमारे मर गए ना, तो तब से हमारा ज़मीन भी बंद हो गया और कुछ कॉलीफ्लावर भी बंद हो गया। इस तरह से वो चलते रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा वो पुराण उसका। फिर साड़ी की बात शुरू करो, तो साड़ी के बारे में आपको पुराण सुनाएंगे कि मैंने कैसे दुकान में गई थी, फिर उधर उसमें झगड़ा हुआ था मेरा, फिर मैंने साड़ी फोड़ दी थी, उसी साड़ी लेके आई थी मैं, फिर ऐसा वैसा, फिर वो कॉटन साड़ी अच्छी नहीं होती है, वो ऐसे दिखती है अच्छी नहीं है, ऐसा करके डिस्कशन चलते रहते हैं पूरा, एंड ही नहीं होता। उसको हम बोलते हैं वर्बल डायरिया। ऐसा है, कुछ लोग ऐसे रुक ही सकते नहीं। आप पूछेंगे उनको कि ये ज़रा दवाई देखना बुक में, उसका कंटेंट क्या है उसका। जैसे ही वो कंप्यूटर खोल के बैठेगा तो मैंने कहा पूछा था इसके अंदर कितनी दवाई है देखना खाली, तो उसका साइड इफेक्ट, डोसेज, उसका क्या कैसा खाना, दिन में कितने बार खाना, कौन सी कंपनी का, चार कंपनी में मिल रहा है, ये चार नाम से मिल रहा है, उसकी कीमत चार कंपनी में इतनी है। मैंने बोला मैंने खाली खाली उसके अंदर कितनी दवाई है उसमें, लेकिन सुन लो ना अभी मैं थोड़ा खोली रखती हूँ। ऐसा है, तो ये एक प्रकार का पजल। इसमें किसी को दिल दुखता नहीं है, लेकिन समय की बर्बादी बहुत परफेक्टली होती है। जितने भी नहीं बोले, आप बोले मैंने बुरा तो नहीं बोला ना, मैंने कुछ बुरा तो नहीं बोला, लेकिन ज़रूरत भी नहीं था ना। तो उसके लिए ऐसे कहावत है जो क्रिश्चन धर्म के ग्रंथों में ज़्यादा आती है कि बिना ज़रूरत के आप बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ जो घर है अवकाश खराब होता है। डू नॉट स्पॉइल द ईथर ऑफ द लॉर्ड बाय टॉकिंग विद द नॉन नेसेसरी। तो ज़रूरत है भी बिल्कुल बिना ज़रूरत से बिल्कुल नहीं बोलना। ऐसे भी बिब्लिकल शास्त्र में लिखा है कुछ भी बोलने के पहले वो पहले सोचे ज़रूरत है क्या उसकी, तो बोलो, और कुछ भी बोलने के पहले सोचो कि वो सत्य है क्या, तो बोलो। बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई सोचता नहीं, सीधे बोल देता है फटाक से, तो परिणाम क्या हुआ सोचता है। सबसे पहले सोचना चाहिए कि वो जो जो बोल रहा हूँ वो ज़रूरी है क्या, तो बोलना। और तीसरा चीज़ है वो बेनिफिशियल है क्या, लाभदायी है क्या, तीन चीज़ें हैं, एक ज़रूरी है क्या, एक लाभदायी है क्या, एक सत्य है क्या, तभी उसको बोलना। ये भगवत गीता में दिया गया। और एक प्रकार का पजल और होता है, आप खुद भी बोल रहे हैं, आप गूंगे भी हो सकते, लेकिन आप पढ़ ऐसी चीज़ें रहे हो जो ज़रूरी है। जैसे रविन्द्र टंडन का लोगों पर ऐश्वर्य राय का पहला प्यार पढ़ रहे हो, चाव से पढ़ रहे हो, लेकिन वो भी प्रजल्प है, आप बोल रहे हो, आप सुन रहे हो। फिल्म स्टार स्टारडस्ट स्क्रीन ये सब पिक्चर के न्यूज़ पेपर दिनभर पढ़ते रहे, तो आप ज़रूरत के नाम पर तो जानना जरूरी है। ट्रेन बंद है कि चालू है बारिश का, लेकिन वो ट्रेन बंद है कि चालू है ये देखने के लिए पेपर खोला था, उसके बाद में किसने क्या बोला, ओवैसी ने क्या बोला, नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, फिर अभी राहुल गांधी ने क्या कमेंट दिया उसके ऊपर, फिर उसने आजम खान ने क्या बोला, सारा चीज़ आप पढ़ते हैं। इसे आपको ज़रूरत नहीं ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। हाँ, GST आने वाला है तो पता चलना पड़ेगा ना कि भाई यात्रा में होटल के रूम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, महंगे होंगे कि सस्ते होंगे, पेट्रोल की सस्ता होगी कि महंगा होगा, कपड़े का क्या होगा, गाड़ी सस्ती होगी, घर सस्ते होंगे कि क्या होगा। लेकिन वो GST के बहाने आप सारे न्यूज़ पढ़ेंगे, पर उससे आपके कनेक्शन नहीं होंगे, पढ़ते रहेंगे। मथुरा में टेम्परेचर कितना है, अमृतसर में कितना है, फिर महाबलेश्वर में कितना है, उत्तरकाशी में कितना है, सब देखेंगे। ये भी एक प्रकार का बजट है। सबसे अधिक प्रेजेंट बात कर मोबाइल में। ऐसा होता है ना मोबाइल का कि मुझे परमान प्रभु को कोई मैसेज देना था लेकिन तो उसको भूल जाता हूँ मैं। 15 मिनट सब होने का ऐसा नहीं पड़ पड़ा वो तो मीटिंग का मैसेज भेजा नहीं, क्योंकि उनको मैसेज करने के लिए जब मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ तो कुछ नए मैसेज दिखाई पड़ते हैं। तो मैं बोलता हूँ उसको पढ़ के फिर करूँगा उसको, तो उसको पढ़ने के बाद उसको रिप्लाई करने का मूड आता है, रिप्लाई करने का अगला मैसेज। उस पर कुछ वीडियो फिल्म आती है उसको देखा, उसके बाद में भूल ही गया कि मैंने खोला कुछ मोबाइल। सबसे अधिक पहल क्यों ना मोबाइल में, मोबाइल फेसबुक ईमेल मॉन्टन। आप ईमेल खोलते हो कुछ गुरु जी का मेल आएगा देखने के लिए तो बोलते हैं कि अरे स्नैपडील कीपेस्ट डील फॉर क्या बोलते हैं उसको बैटरी 20,000 mAh का बैटरी पावर बैंक तो वो खोलते दिखता है दस्तावेज मिल रहे तो मदन मोहन को फोन करेगा अरे किस वास्ते में कैसा मिल रहा है बोले भाई मतलब वो ओवर रहता है खराब रहता है उसको मतलब आप तो जब खोला तो फिर मोबाइल का भी दिखेगा और कितने गिरेगा फिर कपड़ा सुखाने का भी टाइम दिखेगा। अभी बोले बारिश का मौसम है तो भी ज़रूरी है भाई, बोल रही थी कल ही क्योंकि लाना है अपने को तो दिख रहा है तो देखो उसको उठते जा। तो टोपा जी कहते थे कि जो ढेर सारे किताबें लिखते हैं ढेर सारे पेपर निकालते हैं 60-60, 120 पन्ने के पेपर निकालते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ना 120 पन्ने निकालते हैं, 60 पन्ने का मुंबई भी रहा और 60 पन्ने का पेपर होता है। कुछ लोग उसको पढ़ते हैं बिगनिंग टू एंड। तो ये सबसे बड़ा पजल उनको इतना सारा बताना है हर चीज़ के बारे में और अधिकतर बुरा बताना है। अच्छा नहीं बताएगी यहाँ सत्संग हुआ स्वामी जी यहाँ पर व्रत के बड़े संत यहाँ पर आए थे, वो कुछ भी नहीं बताएंगे बुरा बुरा डिस्कस करते रहेंगे दिन भर। खून खराबा अपघात एक्सीडेंट मृत्यु सारी बातें बताते हैं सब लोग चाव से पढ़ते रहेंगे। और फिर वो रिजल्ट में और एक चीज़ होती है उसको कहते हैं मराठी में अहम अहमता, मतलब वो आतुरता होती है कि अरे तुम बता रहे हो मुझे भी इसमें बताया है तुम रुको मैं बताता हूँ मैं मेरे को रियल मालूम है सर तो सोचते आपने बताता हूँ। ऐसे लिखे कि आप नेशनल पार्क जाओगे ना गार्डन में जाओगे तो लोग बुद्ध लोग बैठे रहते हैं तो उसमें किसी को बोलने देने देते नहीं तो उनको बोलना है मतलब उनको बताना है कि वो विषय में मुझे ज़्यादा मालूम है अगर ये पूरा बता देगी तो मैं क्या बताऊँगा उसको। अगर वो न्यूज़ पूरा आपने बता दिया जितना मुझे पता है तो मुझे वो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं बार बार आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसको पूरा पता है तो मैं रोक रोक के फिर वो जो बताने के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये मुझे पता है तो मैं वेट करूँगा कि आप कुछ कम बताएं ताकि मैं मेरा एंड में बता दूँ कि मेरे पास कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन। यही हमारा जीवन है कि हम किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं बताएँ कहानी और क्या प्रश्न है आपको अगर पता चलता है कि T20 पॉइजन है तो क्या करना चाहिए। जिस दिन आपको समझ में आया कि पॉइजन है आपको पीना बंद करना चाहिए। तो पता चला शराब पॉइजन है तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए जो गलत चीज़ तुरंत छोड़नी चाहिए। अगर आपको यकीन आया तो हमारा यकीन जो है हमारी श्रद्धा वो केवल चर्चा के समय तक ही रहता है। जब चर्चा हो रही है तो हाँ हमारा जो कुछ बराबर सही बोल ऐसा होता है। देखा एक कथा समाप्त हो गई फिर अपने अपने घर पे अपने अपने लेवल पे चले जाते हैं वही करने से पहले चले जाते तो उससे दृढ़ता प्राप्त करने के लिए सक्षम क्या है जीवन में ना। अगर कोई आमूलाग्र बदल अपेक्षित है तो वो आमूलाग्र मतलब क्या आमूल अग्र मूल से लेकर अग्र तक आपाद मस्तक मतलब आपाद मस्तक पैर से लेकर मस्तक नख शिखांत नख से लेकर शिखा तक नख से लेकर शिखा ऐसा बदल अगर कोई जीवन में चाहिए ना तो तो वो सबसे अधिक अच्छी तरह से सक्षम नहीं करता, उनके बिना से कोई शक्ति नहीं है अंदर, किसी के अंदर परिवर्तन ला सकता है। और जितना सत्संग करने वाला व्यक्ति साक्षात्कारी है, जिसको अनुभव भी है, उतना उसका अनुभव खुद को हो गया है, उतना ही परिवर्तन सुनने वाले भी। कथा बोलने वाले से अधिक सुनने वाले में परिवर्तन नहीं होता, फिर भाई उतना ही परिवर्तन, जितना उसका लेवल है, जितना आपका टीचर लेवल पे है उतना ही थोड़ा, आठवीं का टीचर पीएचडी का सब्जेक्ट नहीं थोड़ा। इस तरह से सत्संग शुद्ध भक्त का हो तो आपके अंदर पूरा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। एक वाक्य के लिए आपको एकदम अच्छा जीवन प्रगल्पकों का सालना है, तो बेस्ट ये है शास्त्र का अध्ययन करो, शास्त्र के बारे में सुनो किसी के मुख से, तुम्हारी वही व्यर्थ नहीं करो। क्योंकि अगर आप खुद ही प्रगल्प नहीं कर रहे हैं, आपका मन आपके साथ हेल्प करेगा, मैंने किसी जिसका मुंह देखना नहीं, उसका मुंह देखना, मुझे बैठना पड़ा मीटिंग में, क्या करूँ, देखना नहीं, देखना पड़ा एक घंटे के, और एक घंटे के बाद आप चले गए अपने काम पे, लंच लेने के लिए या किसी काम पे, लेकिन वो जो मन में थी ना नेगेटिव भावना, वो मन आपको बता पड़ेगा, वो व्यक्ति दिखा नहीं जाएगा, तो मतलब मन आपके साथ प्रेरित होगा। जब तक आप अपने मन को और युवा को एक अच्छा दिव्य आध्यात्मिक विषय नहीं देंगे, तब तक मन आपके साथ में कुछ ना कुछ तो बात करते रहेगा, वो छोड़ेगा ना, मन कभी भी शांत नहीं होगा, जब के समय भी शांत रहेगा, कभी सोचते रहेगा कि अलग अलग फैक्ट्री के विचार करते। तो अगर मन को आपने ट्रेनिंग नहीं दिया, बेफिक्र की बातें नहीं करना, करना है तो अच्छी बातें करना, क्योंकि मन आपको कुछ तड़पाते रहेगा और आपको समझेगा भी नहीं, आपको लगा मैं शांत हूँ, 8 घंटे किसी से बातें नहीं किया, ना फोन किया ना कुछ किया, आप भक्त होकर कितने साल हो गए, कितने साल पूछ रहा हूँ, एक्टिव एक्टिव सोलह माला होकर कितने साल हो गए, ओके, तो 15 साल में आपको आज मालूम पड़ता होगा कि आपके बहुत सारे पुराने रिश्ते अभी ना के बराबर ही हैं, और आज जो भी कप रिश्ते हैं वो अधिकतर डिवोटी के साथ हैं, ठीक है ना, मेरी बात करी करें तो 15 साल पहले जिनको छोड़ना आपके लिए मुमकिन नहीं था, वो आज ऑटोमेटिकली आपको दूर चले गए, और बदल करने वाले होंगे लेकिन फिर भी डिवोटी नाम के ही लोग मुझसे आपके आश्रय मिला, तो उनका संग छोड़ के आपको आज कोई नुकसान लग रहा है क्या, अरे मेरी स्कूल की प्रेम इतनी अच्छी बदलत स्थिति है, आज वो घर का भाई ने कितना नुकसान हो रहा है, क्या आपको लगता है। इसी तरह से मैं भी जब डिवोटी था नहीं बना था, तभी हमारे सब परिवार के रिश्ते थे, लेकिन डिवोटी बनने के बाद में वो रिश्ते ऑटोमेटिकली कम 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 होते गए और भक्तों के रिश्ते ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते गए, आज ना के बराबर ही है कुछ कास्ट वाले लोगों के साथ, क्योंकि कोई नुकसान नहीं कर रहे, हाँ किसी का कुछ फंक्शन है, शादी है, कुछ एंगेजमेंट है, कुछ बेस्ट सेरेमनी है, कुछ जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी कुछ चर्चा करने के लिए विषय नहीं बचता, उनको ही पता है हमको ही पता है, यहाँ तक कि मेरे घर के परिवार में जब मैं मिलता हूँ तो 10-15 मिनट के बाद पता नहीं चलता क्या बोलूँगी उसके आगे, क्या विषय पर चर्चा है, इतनी कॉमन विषय है ही नहीं, उनका विषय फिल्म स्टार है, उनका कपड़े हैं, उनका विषय हीरो हीरो हीरोइन है, उनका क्या क्या विषय है, हमारा विषय तो है ही नहीं, उनको पता चलता कि इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं। उसी तरह से आज आप, मैं अभी आपको उत्तर दे रहा हूँ आपको, उसी तरह से आज आपको लग रहा है कि अगर मैं प्रगल्प करना या प्रगल्प सुनना बंद करूंगी, मुझे अधिकतर रिश्ते छोड़ देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप में श्रद्धा है और ये सब छूट जाएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ नुकसान नहीं हो रहा मेरा, हूँ मैं, क्योंकि आप में इतनी श्रद्धा और निश्चय नहीं है, इसलिए आप उसको छोड़ नहीं पाते। और जिसके बारे में आपको श्रद्धा और निश्चय था, उसको आप पहले ही छोड़ चुके हैं, है कि नहीं बताओ? पहले शादियों में आप लोग खाना खाते थे, अभी आप नहीं खाते, तो शादियों में आपका जाना भी कम हो गया उसकी वजह से, और जाना ही पड़ेगा तो जाए जा रहे हो, लेकिन उसको सही बात खा के लौट के आ रहे हो। तो आप इस चीज़ को नुकसान महसूस करते हो कि ओके महसूस करते हो? इसी तरह से आज आपके जो रिश्ते नाते हैं भक्तों के अंदर जो है 90%, और उसमें से 90% में से 50% लोग तो प्रपोजल भी करते रहते हैं, और आपने ठान लिया कि मेरे को अभी नहीं करना टाइम पर, भगवान से इसमें जाना है, जैसे कि जो करना है करना है। तो अपने आप आपका वो कंपनी कम कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों को मालूम है कि ये बातें नहीं करने वाले, अभी साड़ी की बात करके कोई बातें नहीं करेगी तो क्या करेगी, क्योंकि आपके साथ मिलना जुलना ही बंद हो जाएगा। तो उसमें 10 साल के बाद में आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग अभी कम हो गए, लेकिन आप नुकसान की भावना फीलिंग करो, फील करोगे। जैसे ही आप निश्चय कर लेते हैं कि मैं बेफिजूल की बातें नहीं करता या नहीं करती, तो लोग भी आपको वैसे ही मिलते। मेरे साथ तो यहाँ पर आकर कोई टाइम पास बातें नहीं करता, आपको पता है, सबको पता है ना। जैसे ना, जैसे देखो, आपको आपका मैसेज लोगों को देना है कि मुझे ये अच्छा लगता नहीं, ये माता जी को नहीं अच्छा लगता, ऐसा मानना पड़ेगा, फिर तो वो आपके साथ वो बातें नहीं करेंगे। शुरू शुरू में उनको नहीं पता चलेगा, तो आपने जब फर्म मैसेज दे दिया तो फिर वो नहीं करेंगे। आपको तय करना और डरना नहीं किस बात से, देखो सत्य को अपनाने में ना डरने की जरूरत नहीं है, जिसको सत्य पर विश्वास है सत्य को अपनाने में डरता नहीं है। क्या आप खाई भी नहीं पीते हो, क्या सुन लो यार, तुम्हारा हरे कृष्ण तो ज़्यादा ही बेहद क्या बात है, हद हो गई है, खाई भी नहीं पीते हो क्या तुम्हारा धर्म? लेकिन उसके बाद में वो लोग आपसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपको उनको पता है कि ये लोग नहीं पियेंगे, और निश्चय है उनको मालूम नहीं, उनको बोल के फायदा नहीं, एक दो बार करेंगे, लेकिन बाद में आपका निश्चय देखिए फिर वो अरे ले लो सब्जी खा लो ना, बड़े सब्जी बनने अपमान में लेकिन प्याज वो नहीं खाएगा, वो आपको बोलेगा नहीं, बाद में फिर बंद करेगा बोलना, तो लाभ ही लाभ है उसको। मेरी बिल्डिंग में फंक्शन होता है, उनको मालूम है डॉक्टर साहब नहीं खाएंगे, बताएंगे सब जलेबी खाओ, जलेबी फ्री है मैं लगे, ऐसे ही बोलेगा, वो ही नहीं बोलेंगे समोसा खाओ, उसमें अच्छा ही क्यों बोला, मतलब आपने ये कला को आत्मसात कर लिया है, इससे आपने ये लोगों को मैसेज दे दिया कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करती, ये बातों को नहीं करती, मेरे साथ में आप बेफजूल की जिम्मेदारी की बातें नहीं कर सकते, इतना मैसेज उनको मिला तो आपसे बातें नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया आपका रिश्ता टूट गया और वो हो गया ये हो गया, उल्टा आपका आदर बढ़ता है उससे। अभी मेरे मुझसे इस हॉस्पिटल में कोई भी बेफजूल की बातें नहीं कर सकता, मैं चाहूँ भी तो भी नहीं कर सकता, बोलो, क्योंकि तो मैंने ऐसा मैसेज लोगों को देकर रखा है कि इनसे के पास जाना है तो स्पिरिचुअल बातें सुननी या बोलनी पड़ेगी, दोनों में से एक ही होगा, और बाहर भी वैसा ही है, रिश्तेदारी में भी ऐसा ही है, ऐसे भी अगर शादी में जाना ही पड़ेगा तो उधर हम घुमा फिरा कि वही जगह लोगों को लेकर आते, क्योंकि अभी समझो मेरे भाई शादी में गए थे, मेरे भी अभी मेरी भाभी और भैया भैया हम जो स्पेन में जाके आए रॉक ऑफ जिब्राल्टर देख के आए, तो वो आते ही शुरू करेंगे हम लोग स्पेन में गए थे, अरे ऐसा गए थे, इतना मज़ा आया, क्या टेम्परेचर था, क्या वातावरण था, क्या सफाई थी, वो रॉक ऑफ जिब्राल्टर क्या अद्भुत चीज़ थी वगैरह वगैरह। तो मैं तुरंत वृंदावन की बात शुरू करूँगा, तुरंत बोलेगा उत्तरकाशी गया था मैं, उधर गंगा जी के पास में गया था, उधर मैं जप करके बैठा था पत्थर पे, फिर वहाँ से गंगोत्री गया था, उधर से मैं बद्रीनाथ गया था, फिर लास्ट के द्वारका यात्रा निकली थी, क्या आनंद आया था आपका यात्रा में, हम कहाँ कहाँ गए, सोमनाथ गए, इधर उधर गए, तुरंत हम लोग उसका विषय पर लेकर, और बैठना ही मुझे उसको उठ के जाना मुमकिन नहीं है, बड़ा खराब दिखेगा, तो मैं फिर डिस्कशन को ऐसे घुमा दूंगा, अभी जयपुर के निकालने वाला हूँ, अभी अरवान पार्टी में गया था, उधर ऐसा हुआ उधर ऐसा हुआ, हमने वहाँ पर बुक किया, अभी बढ़िया दर्शन करेंगे, जोधपुर की जोधाबाई के कृष्ण मंदिर में भी जाएंगे, और मीराबाई के कृष्ण मंदिर में भी जाएंगे, और आमेर फोर्ट भी देखेंगे, ऐसा जैसा करेंगे, आप पर डिपेंड है। लोगों को अगर आपने कृष्ण भावना का जीवन स्वीकार किया है ना, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि अभी फालतू बातें व्यक्ति नहीं करेगा, ये अच्छा ही है, इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है। और अगर बेफजूल की बातें करने वाले भक्तों का भी संग छूट जाएगा ना, तो भी अच्छा ही, क्योंकि रूप गोस्वामी दो एक बात बताते हैं, बहुत सुंदर बात बताते हैं, वो कहते हैं असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, बराबर है, कितना सिंपल वाक्य है, असत्संग छोड़ देना है, लेकिन असत्संग भक्तों के बीच में हो सकता है, पता कि नहीं। अगर मैं और आप अभी फिल्मों की बातें करने बैठेंगे तो मैं भक्त हूँ आप ही भक्त हो, लेकिन हम लोग फिल्मों की बातें करें तो असत्संग हो गया ना, असत का ही संग कर रहे तो असत्संग हो गया ना। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि अभक्तों का संग छोड़ना चाहिए, और उन भक्तों का संग भी छोड़ना चाहिए जो भक्ति के बगैर का बातें करते रहते हैं, खास करके उन्होंने बताया जो सेक्स और मनी इस विषय में आसक्त रहते हैं, ऐसे भक्तों का संग छोड़ देना चाहिए। जो जप करते हैं, चार नियम पालन करते हैं, सब भक्ति का नियम अपनाते हैं, लेकिन वो सेक्स और मनी इन दोनों से बहुत आसक्त हैं, ऐसे भक्तों का संग भी छोड़ देना चाहिए, ऐसे रूप गोस्वामी बताते हैं। इसको कोई अपराध नहीं करेगा। अगर वो भक्त भी जो स्त्री और धन से आसक्त है, वो भक्त भी कृष्ण के बारे में बात करने लगेगा तो आप बैठे उसके साथ, लेकिन वो धीरे धीरे अगर आपको स्त्री और धन के विषय में चर्चा करने में लेके जाएगा तो आपको तुरंत कट करना है, उतना तो निश्चय हमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप आलूचंद बनेंगे। पता है आलूचंद क्या होता है? आलूचंद मतलब ना वो किसी भी सब्जी में जाता है उसको ना करेले से परहेज है, ना फ्लावर से प्रेम है, ना गोभी से प्रेम है, वो जिधर भी डालेगा उधर घुस जाएगा, वो उसको आलूचंद कहते हैं। और एक उपमा उसको होती है पानी की उपमा, पानी 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 रे पानी रे, रंग कैसा जिसमें मिला है उसके जैसा, उसका रंग नहीं होता है उसको। कुछ लोग ऐसे होते, भक्त भी ऐसे होते ना, जो कर्मी संघ में जाएंगे और उसी कर्मी बातें करेंगे और लगेगा क्या आदमी है, अपने ऐसा आदमी है, ऐसा जगह नहीं। और भक्त में आएंगे तो ऐसा भक्ति की बात करने लगे, क्या भक्त है ये, वाह क्या बात है, लेकिन एक्चुअली वो चीटर रहता है खुद के लिए, ही इज चीटिंग हिमसेल्फ, वो खाली पॉपुलरिटी के लिए खोज में रहता है वो हमेशा, उसको ना आपसे प्रेम है ना किसी प्रेम है, उसको खुद के पॉपुलरिटी पर प्रेम रहता है, इसलिए वो पॉपुलरिटी बना रखने के लिए सभी प्रकार के ग्रुप में उनकी तरह बातें करता है। और ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं, उनका सॉन्ग बहुत डेंजरस होता है, सॉन्ग पता चलता नहीं कि कौन एक्चुअली भक्त है क्या है, समझता नहीं, क्योंकि वो हर ग्रुप में वो एकदम उसी ग्रुप की तरह अच्छी अच्छी बातें करता है, डिप्लोमेटिक, लेकिन डिप्लोमेटिक भी नहीं बोल सकते वो, ऐसा नहीं कि वो क्या करे अभी वो थोड़ा टाइम निकालना है तो कर रहे हैं, नहीं वो दिल से बातें करता है सब कुछ इंटेंशनली। अभी हम भी दो चार मिनट बैठेंगे शादी में जाएंगे तो ऐसे कोई कुछ बहाना करके वो जाना बाथरूम जाना करके चाहे के उसे उठ जाएंगे वहाँ से, वापस ही नहीं आएंगे, लेकिन ये व्यक्ति वहीं बैठेगा नया नया विषय ढूंढ के निकालेगा, सबका मनोरंजन करेगा, तो दूसरे ग्रुप में जाएगा वहाँ पर सत्संग की बातें भी ऐसा करेगा, ऐसे कह रही बाप रे क्या आदमी ऐसा लगेगा, लेकिन होता है बहुत ढोंगी, ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए। अपना ना भक्त लोगों का ऐसा होना है, अपना जो जमीर या चरित्र जो है ना एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसे हैं और ऐसे रहेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज, आपको अच्छा लगेगा इसलिए बदलेंगे नहीं, और आपको बुरा लगेगा इसलिए बदलेंगे नहीं, जैसे वैसे रहेंगे, हम जैसे हैं वैसे हैं, आपको अच्छा लगा तो बैठो नहीं तो चले जाओ, लेकिन हम ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल आपके साथ इसलिए कंधा का बीज नहीं खाएंगे और उनके संग इसलिए पकौड़ा नहीं खीर नहीं खाएंगे, जो हमारा है वही खाएंगे। उतना तो भक्त को अपना ना खंभा गाड़ी देना चाहिए, कुछ भी ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।